You are listening to Rainbow Diaries podcast with Kabir.
Rainbow Diaries with Kabir, which is India's only LGBTQI+ radio show. It's a podcast. And, you know, kahaniyan bahut sari hoti hain. And LGBTQ community is filled with stories. And everybody comes with their own experiences. And you are somebody very unique because when I was looking at your Instagram, mujhe bahut hi heartfelt laga. Tumme maza bhi hai, tumme emotion bhi hai, tumme sadness bhi hai. You're like a full-on Bollywood picture. So we have Pranav with us, Pranav Grover. Welcome to Rainbow Diaries.
Thank you so much, Kabir. Glad to be here.
To batao mujhe, tumhari ek video maine dekhi jisme tumne likha tha ki, you know, for the longest time in your life, you didn't like yourself. You didn't like your body. You didn't like you as a person. You hated yourself, basically, physically, especially. तो वो क्या कैसी फीलिंग थी और वो जर्नी कैसी थी?
जब आप ग्रो अप हो रहे हो उसमें आप एक पतले से फिगर हो जहाँ पे आपकी मूछें आ रही हैं, दाढ़ी आ रही है और आपको शीशे में देखते लग रहा है यार कि ये कौन है जो इतना गंदा दिख रहा है, कोई इससे बात क्यों नहीं करेगा, मैं खुद इससे बात नहीं करना चाहूंगा, अगर मेरे सामने ऐसा कोई लड़का है तो मेरे से वैसे ही कौन बात करना चाहेगा। 7 साल पहले शीशे में देख के मैं बोलता था कि ये कौन है, और आज जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कौन है जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। तो वो सडन चेंज इन द स्टेटमेंट्स, उसको स्टेटमेंट चेंज करने में तो 7 सेकंड लगे बट मुझे 7 साल लग गए, क्योंकि टू एक्सेप्ट अ बॉडी लाइक दिस जहाँ पे आप एक प्रॉपर फेमिनाइन फिगर हो बट येट यू आइडेंटिफाई एज अ मैन, एंड वो पतला फिगर होना, वो लंबे बाल, वो मूछे आना, वो सब हटाना और उसके बाद अपने आप को शीशे में देखना इज अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी। एंड आप बाकी बाइनरीज में फिट नहीं होते हो जहाँ पे एक लड़का जिम जा रहा है, बाइसेप्स बना रहा है, लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम ना लड़कियां आपसे बात कर रही है ना लड़के आपसे बात कर रहे हैं, जबकि अट्रैक्शन आपकी उन स्वेटी बॉयज पे है जो फुटबॉल खेल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सिट विद गर्ल्स एंड गॉसिप। तो कहीं ना कहीं वो एज अ मैन मैं बाइनरीज में फिट नहीं कर पा रहा था, एंड नाउ आई रियलाइज दैट बीइंग अ मैन इज डिफरेंट एंड बीइंग मैस्कुलिन इज डिफरेंट। आई आइडेंटिफाई एज अ मैन बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैन टू एक्ट एज मैस्कुलिन, यू कैन एक्ट एज अ मैन इन वेरियस जेस्चर्स एंड वेरियस एक्शंस। जब ये चीज थोड़ी सी दिमाग में घुसी और थोड़ा सा इंसान ने एक्सपीरियंसेस देखने स्टार्ट किए तो लगा कि सी कोई अपना नहीं होता, ये बॉडी के साथ हम पैदा हुए हैं, इसी बॉडी के साथ हमने मरना है, तो जितना इससे नफरत करोगे उतना अपनी लाइफ को और टफ कर रहे हो, व्हाई नॉट एक्सेप्ट दिस बॉडी। और उसके बाद जब मैंने इस बॉडी को एक्सेप्ट किया तो अब हर एक लड़की भगवान को जाके बोलती है कि हमें सद्बुद्धि मत दो लेकिन प्रणव जैसी कमर दे दो, तो चाहे वो लड़कियों को नहीं मिल पाई ना वो लड़कों को मिल पाई, मुझे मिल गई, तो उस बॉडी को मैं यूज ना करूं पॉजिटिव टर्म्स में तो वो तो फिर थोड़ी सी मेरी स्टूपिडिटी है। तो ये मेरी बॉडी पॉजिटिविटी की 7 साल की इतनी लंबी जर्नी रही है।
I love it when you said that, you know, वो 7 सेकंड की स्टेटमेंट थी लेकिन 7 साल लग गए उसको लाने में। सेल्फ सैबोटाज एक वर्ड है जहाँ पे हम खुद को जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, खुद को, अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को, सबको, अपनी अच्छी चीज़ों को दबाते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमेशा खुद को कोसते रहते हैं, बोलते हैं कि हमें ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट, हम हमेशा बाहर की बुलिंग की बात करते हैं कि लोग हमें बुली कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान खुद को इतना बुली कर देता है, was there a breaking point where you really broke down, something happened that you can never forget in your life that you would like to share with us, any story, anybody, any person that really broke you?
एक घर का जो बड़ा लड़का होता है उसको अपने घर का कुल का दीपक बनना होता है, बट मैं वो नहीं बन पा रहा था, तो मेरी फैमिली मेरे से एक्सपेक्टेशंस जितनी रख रही थी मैं उतना ही उनको ब्रेक कर रहा था, उतना ही वो मुझे कोस रहे थे कि तू पैदा ही क्यों हुआ, ये हमारे उस पे एम्बैरेसमेंट है या बोझ बन के आ रहा है। एंड पैंडेमिक में जहाँ पे पूरी फैमिली को साथ रहना पड़ रहा था वो मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ पॉइंट था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने पैंडेमिक कैसे सर्वाइव किया, हालांकि मैं कभी कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, बट ये सडन इमोशंस और जो रश मेरे अंदर आया हर दिन मेरे लिए एक सुसाइड का दिन था कि आज चलो उठे हैं तो आज किसी तरह अपने आप को हार्म करना है कि चलो आज खत्म करेंगे जिंदगी। बट एट दैट पॉइंट माय डॉग एंटर्ड माय लाइफ एंड ही सेव्ड मी समवेयर, एंड यू नो ही बिकेम द एपिसेंटर ऑफ माय फैमिली, जहां पे एक 6 लोगों के फैमिली में कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहा है, एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाह रहा, बट येट दे हैव टू सर्वाइव इन द सेम हाउस, जहां पे आपको लगता है कि घर में आपको सोलेस नहीं मिल रहा तो आप बाहर जाके ढूंढते हो, आप घर से बाहर स्टेप इन करते हो तो वो क्रूअल वर्ल्ड आपको दिख जाता है जो आपको एकदम बैठा हुआ है उस पे कि आपको हार्म करने के उस पे। तो मेरे लिए ना घर पे सर्वाइव होना मुश्किल था, बाहर भी सर्वाइव करना मुश्किल था, मेरे लिए कोई ऐसी जगह थी नहीं जिसे मैं घर कह पाता, और उसी टाइम पे कोई स्कूल, उस टाइम हम लोग स्कूल में थे, कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं सबसे अलग था, तो मुझे लगता था कि अलग होना गलत है।
एग्जैक्टली exactly, और यही तो पूरा पैराडॉक्स है, ये पूरा जो कंफ्यूजन है यहीं पर ही है कि हम जिंदगी भर कोशिश करते हैं कि हम भेड़ चाल ना करें, अलग हो, स्पार्क हो हमारे अंदर, और जब भगवान ने हमें अलग बनाया है तो हम फिर उसको गलत समझते हैं कि हाय हाय मैं अलग कैसे हो गया। यू नो पेरेंट्स को एक पेडेस्टल पे हम रखते हैं कि माँ बाप जो कहते हैं वो सही है, हमें बचपन से कंडीशन यही किया गया कि जो माँ बाप बोल रहे हैं वो सही है। मैं आज 30 साल का हुआ हूँ तो मुझे अब ये समझ में आया है कि ये सही नहीं है, ये स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम है, बिकॉज योर पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे हैव नॉट हैड एनी घोटा हुआ पानी और दे हैव नॉट रेड अ बुक विच इज अबाउट लाइफ वेयर दे नो एवरीथिंग। तो ये पेरेंट्स को पेडेस्टल पे रखना, ये तुमने कब छोड़ा, मतलब कब छोड़ा कि मुझसे बड़े जो हैं वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम सब ने पूरी जिंदगी सोचा है।
यू नो जब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ी गलती करके मैंने शेयर किया कि मतलब मैंने शेयर भी नहीं किया, उनको पता चल गया था आई एम गे, एंड उस दिन मेरे घर में काफी फाइट हुई, काफी मारधाड़ हुई, सब कुछ काफी बुरा हुआ। उस दिन मेरे को लगा कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए एम्बैरेसमेंट हूँ, आई हैव टू प्रूव टू माई पेरेंट्स, आई हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि मेरे को हमेशा से सिखाया गया कि पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो कहीं नहीं पढ़े रहोगे, हमेशा धक्के खाओगे। सो मैंने सोचा कि नहीं, अपने पेरेंट्स को प्रूव करते हैं, बट प्रूव नहीं हो पा रहा था कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ। चाहे मैं कोई भी कपड़ा पहनूं, चाहे मैं जिस भी ढंग में रहूं, चाहे मैं जिस भी अपीयरेंस में रहूं, वो तो मैं उन्हीं का बेटा ना। तो अगर आप मुझे एज अ चाइल्ड मेरे इस अपीयरेंस में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जहां पे आपका बेटा खुश है, तो फिर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे कैसे खड़ा हूं। लास्ट ईयर मैंने अपना घर छोड़ा, और जब मैंने अपना घर छोड़ा मैंने बहुत ही रैंडम डे पे, आज 11 सितंबर 2022 को मैंने अपना घर छोड़ा था, आज एक साल बाद मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। Today is the day I left my house last year and I had no place to go. Thankfully, there is an orphanage in Delhi जिसने मुझे accept किया and you know उन लोगों ने मुझे अपने साथ रखा एक महीने के लिए, मेरी मेरी help करी। At the same time I slipped into depression. तो जब मैं इस depression में गया, हमारे Indian parents क्या करते हैं कि being gay को mental illness बोल देंगे, लेकिन actually में अगर कोई mental illness से जा रहा है तो उसको बोलेंगे कि पागल बना, psychiatrist के पास नहीं जाना, क्योंकि वो तुम्हें दवाई देके तुमसे पैसे निकालेगा। And making me a heterosexual person, मेरे पापा ने medicines भी खिलाई कि नहीं खानी है, सीधा बनो, स्ट्रेट बनो, बाइनरीज में फिट करो, और मैंने खाई। बट जब मैंने उनको बोला पापा दैट समथिंग इज रियली रॉन्ग विद माय हेल्थ, आई हैव टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, तो बोल दिया कि नहीं ये सब पागलपंती है। तो मैंने वहां से उनको हटाया उस पेडेस्टल से कि नहीं आपको नहीं पता, क्योंकि अगर आपकी सी मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगा क्योंकि उनके टाइम पे ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था, बट अगेन जो चीज अलग है जरूरी नहीं है कि वो गलत है। एंड आई गॉट डायग्नोज विद डिप्रेशन स्टेज 4 एंड आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग विद मी। I got anxiety attacks, I started getting panic attacks, I started harming myself. वो सब कुछ abnormal लगने लगा मेरी family को। तो मैंने अपनी family से expectations ही छोड़ दी। जब आप किसी से expectations रखोगे, आप अपने आप को indirect way में hurt कर ही रहे हो। But एक as a normal 19-year-old child, आप किसी से भी expectations रखोगे, लेकिन अगर आप अपनी family से तो रखोगे, right? क्योंकि आप उनके साथ बचपन से रहे हो। और अगर वही आपको hurt करेंगे, तब आप कहाँ जाओगे? तब आप किसको अपना best friend बनाओगे? तब आप किसी को best friend बनाने से भी डरोगे?
I know personally that thin people go through a lot of body shaming. कुछ खाया कर, कुछ खाता क्यों नहीं है, है ना, वो हो कमर देखो इतनी पतली बना रखी है, इंसान खुद को भी बॉडी शेम करता है। I want to talk about a journey of somebody who's very thin and is body shamed from the outside and the inside.
सबसे पहले तो आपका सबसे बड़ा जो टारगेट ऑडियंस होती है जो आपको यू नो बॉडी शेम करती है इज योर रिलेटिव्स एंड फैमिली। द मोमेंट यू स्टेप इन दे विल बी ईदर लाइक कितने मोटे हो गए हो, कितने पतले हो गए, कम खाया करो, ज्यादा खाया करो, उनकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। एंड देन टू कवर अप दैट दे गिव यू दिस स्मॉल स्मर्क, थोड़ा सा हंस देंगे कि हम तो मजाक कर रहे हैं व्हाट नॉट, बट आपको नहीं पता कि आपका मजाक इंसान की कितनी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करता है। आपका मजाक एक इंसान को सुबह ना उठने पे मजबूर करता है, आपका मजाक इंसान को शीशे में ना देखने के लिए मजबूर करता है, आपकी छोटा सा मजाक। तो आपको समझना है कि लाइफ में और भी कुछ चीजें, मैं मानता हूँ आपकी जिंदगी बहुत खोखली है, आपकी जिंदगी में कुछ करने को नहीं है यू नो मेरे को ऑब्जेक्टिफाई करने के अलावा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड आई गो थ्रू अ मेडिकल कंडीशन दैट इज थायराइड, पतले होने वाला, जो कि इतना ज्यादा लोगों को बाहर नहीं दिखता, लोगों को दिखता थायराइड मतलब तो मोटा हो गया। तो मुझे बोलेंगे खाया कर, एलोवेरा पी, आंवला का जूस पी, ये काढ़ा पी, ये कर, मैं सब कुछ कर लूं एंड आई एम यू नो वन ऑफ द मोस्ट फूडीएस्ट पर्सन इन माय फैमिली, मैं जितना भी खा लूं मुझे नहीं लगेगा।
कितना इंपॉर्टेंट है खुद के ऊपर काइंड रहना, बिकॉज यू नो वन थिंग दैट आई फील पर्सनली दैट कैन रियली चेंज योर लाइफ एंड रियली चेंज द वे यू सेल्फ लव इज नॉट मेडिटेशन, इट्स नॉट you know workout, it's not anything else, it's being kind to yourself during the toughest times when you do something that is not right। agar tum khud ko ye jo dost ko bolte hai na, hum dost ko jaake bolte hai are koi nahi ho gaya chhod de, wahi kaam hum khud kar lete hain to hum khud ki jaan le lete hain ki tune ye kar kaise diya।
you know if you give love, affection, care, food to any life, every life would respond to that in a very positive way। apne aap ko thoda sa pyar do, jitna tum log dusre se validation यू नो एक्सपेक्ट करते हो, थोड़ी सी वैलिडेशन अपने आप को दोगे ना तो तुम ऑटोमेटिकली K3G के पू बन जाओगे, या अपने आप को ऋतिक रोशन से ज्यादा नहीं समझ पाओगे, तुम लोगों को लगेगा कि सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ, थोड़े से प्यार। और आई नो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे लोग, या इट टेक एवरी गुड थिंग्स टेक टाइम टू यू नो सेटल इन। आपको चेंज जब आप देखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा, आई हैव 12 टैटूज ऑन माई बॉडी, आई किस ऑल माई टाटूज की मैं ये सारा पेन इंड्योर करके आया हूँ। आई गॉट अ सेप्टम पियर्सिंग, मैं अपने आपको शबाशी देता हूँ कि इतनी दर्दनाक चीज मैंने अपने आप को कराई, एंड वो भी इतने पावर से। और जब मैं अपने आपको शीशे में देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, सुबह उठने का एक रीजन मिलता है कि तैयार होना है।
You know, you're sounding very like me because I am very much like that. But it's a process. कभी कभी ऐसा होता है चीजें हर्ट कर जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओवरथिंक करने लगते हैं बहुत सारी चीजों पे. It happens. You know, how much ever we try, some things will just hurt you. So, what was the last thing somebody said to you that really hurt you? Like recently,
I fell in love with a man, and he said that you're not my type because you're not a proper man, and I wish that you also leave your family because they feel that you're an embarrassment to them, and तुझे सच्ची में मर जाना चाहिए क्योंकि तू आदमी नहीं है।
How can somebody say that to you? मतलब?
And he was my best friend.
What?
Yeah, अपने ही धोखा दे जाते हैं। I have lost friendships of 14 years. जो nursery से 12th तक की दोस्ती है मैंने वो तक खत्म करी है। जब इंसान आपको इज्जत देना छोड़ देता है ना, तो आप समझ जाओ कि जब इज्जत गई तो उसका आपके लिए प्यार एंड उसकी साइड से आपके लिए प्यार और अफेक्शन भी खत्म हो जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम द मोस्ट क्लोजेस्ट टू माय डॉग, इवन इफ आई थिंक अबाउट हिम आई स्टार्ट क्राइंग। ही टोल्ड मी आई विश तेरा डॉग तेरे हाथों में मरे, दैट टू ही सेड, एंड ही हैड द ऑडासिटी टू से दैट, एंड दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी टू वॉक आउट ऑफ दैट थिंग। एंड उसके बाद मैंने जिस लेवल पे अचीव करना स्टार्ट किया, वो इंसान आज भी मुझे फॉलो करता है और देखता है कि मैं किस लेवल पे अचीव कर रहा हूँ, ट्राई करता है कॉन्टैक्ट करने का, मेरे से बात करने का। बट अब मुझे पता है कि अगर इससे दोबारा बात करी तो इसका मतलब मैं अपनी इज्जत नहीं करता, और मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है।
You know, you've rescued 300 dogs and I'm a dog lover, and you know, me and my best friend, we always say people who love dogs are the best human beings, because any kind of animals, not even dogs, any animal, people who are animal lovers are good people.
Empathy and sympathy play, you know, a major role, but in very different aspects. You should not sympathize with somebody ki hai bechara, kaaj usi koi help karte, aap kyun nahi kar sakte? Empathize with that dog कि आप उस सिचुएशन में होते तो आप कैसा फील करते, जो आप 3 दिन के लिए खाना नहीं खा रहे हो, आप कचरे से निकाल के अपने मुंह से कर रहे हो और आप बोल नहीं पा रहे हो कि आपको भूख लग रही है, और भाई आपको सब लोग धुतकार के जा रहे हैं, तब आपको कैसा लगता? अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखो तो समझ आएगा। जिस दिन आप डालोगे, जिस दिन आप हेल्प करोगे, अंदर से खुशी होगी कि यार मैंने किसी की हेल्प करी, वो स्माइल ऑटोमेटिकली फेस पे आएगी, वो हंसी ऑटोमेटिकली आएगी। तो जब लोग आप पे हंस के जाते हैं ना, एक बार अपने आप पे हंस के देखो जब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आपको आपके अचीवमेंट मिलेगी। मैंने प्रूव करना स्टार्ट किया किसी और को नहीं, अपने आप को, कि ऐसा हो के भी तेरे से ज्यादा मर्द हूं मैं, क्योंकि मर्द आपकी बॉडी से नहीं बनते हैं, आपके एक्शंस और आपके जेस्चर्स से बनते हैं। आई एम अ मैन नॉट फ्रॉम द बाइनरीज और द स्टीरियोटाइप्स दैट यू सेट फॉर मी, फ्रॉम द एक्शंस दैट आई हैव डन फॉर द सोसाइटी एंड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली। इवन दो माई फैमिली हेट माई सेल्फ, बट आई एम स्टिल देयर ऑन वन कॉल टू हेल्प देम, बिकॉज एट द एंड दे गिव मी एजुकेशन, दे मेड मी दैट लिटरेट कि आज बैठ के मैं ये इंटरव्यू दे पा रहा हूँ और मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मेरे से नफरत करी तो उन्होंने एज अ पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई है। अगर मैं उनसे नफरत करता हूँ, बट एज देयर सन आई कैन नॉट फॉरगेट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 19 साल किसी ने मुझे पाला है, तो इट्स माई टाइम टू प्रूव देम बैक कि मैं, चाहे आपने मेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि ये तो बड़ों के कुछ नहीं कर पाएगा, वही बच्चा अचीव कर रहा है।
वी हैव दिस गेम, इट्स कॉल्ड जिंदगी की एडवाइस, ओके? सो आई वॉन्ट टू आस्क यू वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू एनीबडी, एनी चाइल्ड जिसको घर से शायद उसके सपनों के लिए, वो जो है उसके लिए सपोर्ट नहीं मिलता, एक एडवाइस अगर देनी हो तो क्या है वो, क्या कहना चाहोगे?
डोंट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स कि कोई तुम्हें आके वैलिडेशन देगा या तुम्हें कोई खुश करेगा आके, या कि कोई तुम्हारी जिंदगी का ऐसा पार्ट है कि जिसके बिना तुम सुबह नहीं उठ पा रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, तुम अपने साथ भी सो पाओगे, उठ पाओगे अगर अपने आप से थोड़ा प्यार करोगे तो।
अमेजिंग, लवली टॉकिंग टू यू प्रणव, एंड आई थिंक यू आर समबडी हु इज रियली इंस्पायर्ड बाय मूवीज, you're somebody who's a very good orator, and I think you, I don't know if you can, if you write very well, but I have a feeling you write well, and I love that you love yourself.
You are listening to Rainbow Diaries podcast with Kabir.